कल तक हम शुद्ध भक्ति का कितने लक्षण का विचार किया था? हाँ, किसको याद है? हाथ उठाइए जिसको याद है। कल तक किसका विचार हुआ था? कोई भी हाथ नहीं उठ रहा है। 1 2 3 4 5 ओके ओके प्रश्नी, पहला क्या विचार था बताओ? अच्छा, भक्ति, शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है क्लेशाग्नि। वेरी गुड। बस बस एक, उसके बाद और वहां कौन हाथ उठाया था? रत्न राधिका। नेक्स्ट वन वाज शुभदा। या वेरी गुड शुभदा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शुभदा? ऑल ऑस्पिशियस। वेरी गुड। यहां कौन हाथ उठा था? ओके आशीष। वेरी गुड, शांद्रानंद विशेषात्मा। मतलब क्या है? ओके, हिंदी में क्या होगा? कृष्ण इज द सेंटर ऑफ ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। कृष्ण भक्ति करने से ट्रांसेंडेंटल प्लेजर मिलता है। तो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर का हिंदी क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल, हाँ, दिव्य आनंद। हाँ, बहुत अच्छा, दिव्य आनंद प्राप्ति होता है। तो मतलब दिव्य आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद कितने प्रकार का होता है? वेरी गुड प्रदीप, बताओ 3 प्रकार का आनंद कैसा है? भौतिक आनंद, अच्छा वेरी गुड। मुक्ति के बाद जो आनंद मिलता है उसको कौन सी आनंद कहा जाता है? हाँ, ब्रह्मानंद। एक भौतिक सुख, उसके परे है ब्रह्मानंद, और उसके परे तीसरी क्या है? हाँ हाँ, मतलब वो कौन सी आनंद है? नहीं, दिव्य आनंद, ब्रह्मानंद को भी दिव्यानंद कहा जा सकता है। इसे कहा जाता है सेवानंद। देखो, भोग से आनंद मिलता है, हाँ, और भोग का विपरीत जो भाव है, हाँ, कुछ भौतिक भोग होने से, हाँ, उसे कुछ थोड़ा बहुत आनंद मिलता है जरूर, हाँ, परंतु असल आनंद जो है, भोग का मतलब खुद भोग करना, हाँ, उसका आनंद एक है, परंतु और दूसरा जो आनंद है वो है सेवानंद। दूसरे से सेवा लेकर एक आनंद, और भगवान को सेवा दे के आनंद, इन दोनों में से कौन आनंद सही आनंद है? भगवान का सेवा का जो आनंद है वही सही आनंद है। भक्ति का मतलब है भगवान का सेवा के आनंद। भगवान को सेवा से जो आनंद मिलता है उसके बराबर मुक्ति, उसके पास मुक्ति भी तुच्छ हो जाता है। तो इसका विचार हम करेंगे। अच्छा, और अच्छा एक तो बात चल गया, एक का तीसरी कौन था? आशीष तो चौथा बता दिया। हाँ, या पारुल तुम बताओ। सुदूर लभा मतलब ना, हाँ, फोर्थ, ये आशीष से जोड़ रहे, थर्ड इज सानंद विशेषात्मा, फोर्थ इज सुदूर लभा। सुदुर्लभा काल उसका विचार हुआ था। मतलब सुदुर्लभा का मतलब क्या है? सुदुर्लभा का मतलब आसान नहीं है। दुर्लभ का मतलब क्या है? अच्छा, दुर्लभ का मतलब कठिन, और सुदुर्लभ का मतलब, हाँ, अच्छा, तो सिर्फ आसान नहीं है बोलने से इसका सही विचार नहीं होगा। ये बहुत दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आसान, हाँ, आसान नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है, वो भी सही है, पर बहुत ही मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। सु दुर्लभा, तो ठीक है, ये चार विचार हो गए हैं। भक्ति, शुद्ध भक्ति का क्या है, शुद्ध भक्ति का लक्षण ऐसी है। तो आज हम आप द्वितीय नहीं कहते, द्वितीय कहते, तृतीय कहते, प्रथम, ओके, तो ये हिंदी है, ये संस्कृत है, ये शुद्ध हिंदी है, ओके, तो साथ साथ हमारा हिंदी क्लास भी हो रहा है। शुद्ध भक्ति सुदुर्लभा, अच्छा सुदुर्लभा के बाद पंचम क्या है, पांचवा, ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, सांद्रानंद विशेषात्मा। नहीं, ये सांद्रानंद विशेषात्मा पंचम है, अच्छा मोक्ष लघुता कृत, हाँ बट एखने हाँ ओ अच्छा अच्छा ओके अच्छा, तो इस ये पंचम है मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष को भी तुच्छ बना देता है। हरिभक्ति सुधोदय में प्रह्लाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नृसिंहदेव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानूं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है, हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सुख के सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। मतलब ये मोक्ष भी भक्ति के सामने तुच्छ हो जाता है, मुक्ति भी तुच्छ हो जाता है। इसके विचार हम कल किया था, है ना, याद है? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है कारागार से छुटकारा। ये भौतिक जगत क्या एक कौन सी जगह है? कारागार है। तो कारागार में क्या मिलता है? सजा मिलता है। और कारागार में रहने से क्या अच्छा लगता है? जो कारागार में कैदी हैं वो क्या, उसका क्या सुख मिलता है? नहीं, उसका कष्ट मिलता है। तो असल में इस भौतिक जगत में हम लोगों को भी कष्ट ही मिल रहा है जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेते हैं। जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेते हैं तब तक हमें कारागार में कैद के रूप में, कैदी के रूप में रहना पड़ता है। तो वैसे ही जब हम भगवान को शरण लेते हैं तो हमारा कष्ट का निवृत्ति हो जाता है। और इसका निवृत्ति का रूप कैसा होता है? एकदम राजा का शरण लेने से ही कारागार से शायद मुक्ति मिल भी नहीं सकता है। हो सकता है कि तत्क्षण ही मुक्ति नहीं हो जाता है, परंतु क्या होता है, राजा कारागार के जो देखभाल करने वाले हैं, जेलर हैं वगैरह जो हैं, उनको राजा बताते हैं, देखो ये तो मेरा शरण में आना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा देखो कैसा है, उसका आचरण कैसा है, वो क्या सही रूप से मेरा शरण ले रहे हैं या इस एक या बात के सिर्फ कहने के लिए बोल रहा है कि शरण ले रहा है ना। राजा ऐसे बोल सकता है, और तो उन लोगों ने देखते हैं, और जब देखता है सही रूप से शरण लिया है तब वो क्या करते हैं उसको, तब कारागार के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक आइडियल प्रिजनर बनाते हैं। आइडियल प्रिजनर का मतलब आदर्श, आदर्श बना देते हैं। दूसरे प्रिजनर को, दूसरे कैदी को दिखाते हैं, देखो ये कितना अच्छा कैदी है, ये राजा का शरण ले लिया है, और देखो राजा का शरण लेने से उसको कितना सुविधाएं मिल रहा है, अगर तुम भी राजा का शरण लोगे तो तुमको भी ऐसा सुविधा मिलेगा और बाद में तुमको छुटकारा मिल जाएगा। तो वैसे जो भगवान का शरण लेते हैं तत्क्षण उसका हो सकता है कि मुक्ति नहीं मिलता है, परंतु उसका क्लेश का निवृत्ति हो जाता है, जिसका विचार हम अब तक किया है। सॉरी, नो डिफिकल्टी इन ट्रांसलेटिंग। गुड। तो आप देखिए, जब हम भगवान का शरण लेते हैं तो क्या होता है, क्लेश का कोई कह सकते हैं, ओ आप तो भगवान का शरण लिया है, पर आप बोलते हैं भगवान का शरण लेने से मुक्ति मिल जाता है, तो आपको मुक्ति क्यों नहीं मिला? मुक्ति मिला है, हम कैद खाना में हैं, परंतु हमें कष्ट नहीं मिल रहा है, सजा नहीं मिल रहा है, दंड नहीं मिल रहा है। और कैद खाना का जो अध्यक्ष हैं, जो पालन करने वाला है, उन लोगों ने उस व्यक्ति को एक आदर्श के रूप में सबके समक्ष दिखाते हैं, देखो ये अगर तुम भी भक्त बनोगे तो तुमको भी इतना ऐसा सुविधाएं मिलता रहेगा। और अंत में क्या होगा, उससे जब पूर्ण रूप से राजा का शरण ले लेते हैं तब, और बहुत अच्छा ढंग से राजा को सेवा करते रहते हैं, तो एक दिन राजा बोल सकते हैं कि चलो उसको मेरे प्रासाद में भेज दो। तो भगवान का भक्तों का ऐसा ही होता है, जब तक यहाँ रहते हैं तो भगवान के सेवक के रूप में दूसरे को भी भक्ति के मार्ग में लाने का कोशिश करते हैं, भक्ति के मार्ग में लाते हैं, दूसरे को भी कल्याण साधन करते हैं, और उसके पश्चात इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के पास वापस चले जाते हैं। अच्छा, ये जो कल हम विचार किया था, दो रूप से हमें छुटकारा मिल सकता है, याद है आपको? हाँ पारुल, ओके। हाँ, तो कौन सी कारागार से किस तरह मुक्त होना आसान सही है? शरण लेने से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप बताइए, जो भगवान को भक्त बना है उसके लिए मुक्ति क्या कोई बड़ी बात है? मुक्ति तो आसानी से मिल जाता है। तो कौन सी मुक्ति हमें प्राप्त होना चाहिए, कारागार से भागकर? नहीं, भगवान को शरण लेकर। और भगवान को शरण अगर लेते हैं, जो भगवान को शरण ले लिया वो क्या फिर कैदी है? न कारागार के राजा के प्रतिनिधि बन गया, तब वो कैदी नहीं रहता है। तो उससे कारागार से मुक्ति का कोई जरूरत होता है? होता है मेधा? जरूरत होता है कारागार से मुक्त होने का अलग से? क्यों नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। राजा का शरण लेकर राजा का प्रतिनिधि बनने से ऐसे ही मुक्ति मिल जाता है। तो इसीलिए भक्तों के लिए मुक्ति का अलग रूप से कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो आज सिक्स भी पूरा कर लेते हैं। कल तो पता नहीं है हमको समय होगा, कल क्लास तो समय नहीं होगा, तो आज ही हम खत्म कर लेते हैं पूरा कर। ये अच्छा लग रहा है आपको ये क्लास कुछ? हाँ ये हो रहा है, जानकारी हो रहा है ज्योति? हाँ हो रहा है, फायदा हो रहा है कुछ? हाँ अच्छा। और ये जो षष्ठ जो है, षष्ठ, षष्ठ का हिंदी क्या है प्रदीप? षष्ठ, छठा, ओके छठा। और मालवा भाषा में क्या बोलते हैं? छठवा। तो छठवा लक्षण क्या है? षष्ठ लक्षण है कृष्ण को आकर्षण करना। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, कृष्ण को आकर्षण करना। भक्ति कृष्ण को भी आकर्षण करते। देखिए कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षण करता है। और भक्ति का शक्ति कैसा है? वो कृष्ण को भी आकर्षण करते हैं, करती है। जो भक्ति प्राप्त होते हैं उसके लिए वो कृष्ण को भी आकर्षण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबो को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति के प्रतीक राधा रानी हैं। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं। हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करते हैं। किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक हैं, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली हैं। इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरा शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्व नहीं है, ये तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती हैं। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में ये कहकर ही हैं, हे उद्धव तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वो योग ज्ञान कर्मकांड वेदांत अध्ययन कठिन तपस्या या दान में सर्वोच्च लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो है ही है, किंतु वे मेरी भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेम भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवत में किया है। जब राजा युधिष्ठिर प्रह्लाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं। भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रह्लाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता। वो सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे प्रह्लाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं, वे आपके साथ रह रहे हैं और आपने को उन अन्नों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग ये नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वे आपके साथ, आपके ममेरा भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेश वाहक के रूप में हैं, रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। तो यहाँ हम नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कैसे भक्ति भगवान को आकर्षण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज या पांडव, पंच पांडव, कुंती के पांच पुत्र महान भक्त थे भगवान का, और इस कारण भगवान हर समय उसको उनके साथ रहकर उनके सारे देखभाल कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज को बड़े भाई के तरह सम्मान प्रदर्शन करके उनको आज्ञा पालन करते थे। कुंती देवी जब उनको बताया, कृष्ण को बताया, कृष्ण अब तुम मत जाओ, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण ने द्वारका में हस्तिनापुर से द्वारका जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तैयार भी हो गए थे जाने के पहले, कुंती देवी के पास जाकर उनका अनुमति प्राप्त किया, अनुमति लेने को गया था, तो कुंती देवी ने तब कृष्ण को बताया, देखो कृष्ण, जब उलझन था, कठिनाई था, कष्ट था, हमको जीवन में बहुत कष्ट मिला है, पर उन कष्ट के समय में तुम हर समय हमारे साथ थे, जब ही, और हमारा भी भावना, हमारा चेतना भी तुम पर ही मग्न रहता था, तो अब तो कष्ट का निवृत्ति हो गए हैं, अब सुख का दिन आया है, मेरा पुत्र राजा बना है, तो अब तुम चले जा रहे हो, हम तो चाहता हूं कि तुम इतना कष्ट ही देते रहो, हमको सुख नहीं चाहिए, हम कष्ट चाहिए, हमें कष्ट चाहिए, क्योंकि कष्ट के समय मैं तुमको याद कर सकता हूं। और ऐसे कुंती देवी ने जब कृष्ण को जाने के लिए, ना जाने के लिए अनुरोध की थी, तो कृष्ण उनके बात मान लिया और कुछ दिन हस्तिनापुर में रोक गए थे। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना मामेरा भाई सोचा रखा था और इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं ये मैं समझ नहीं पा सका। इसी स्थिति थी पांडव की। यद्यपि कृष्ण भगवान हैं और महापुरुषों में महानतम हैं, किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे, ये इसका प्रमाण है कि ये भक्ति विधि कितनी महान है, ये भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है।
क्योंकि ये उन्हें आकृष्ट करती हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते वो ये कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है, भगवान का सेवा करने का महत्व कितना है। जो भक्त नहीं बना उसके लिए समझना या अनुभव करना संभव नहीं होता है। तो याद रहेगा हाँ आप सबको, भक्ति पहले तो क्लेशग्नि, इसके पश्चात शुभदा, के पश्चात सांद्रानंद विशेषात्मा, के पश्चात दुर्लभा, इसके पश्चात मोक्ष लघुताकृत, और इसके पश्चात कृष्ण को भी। हाँ कौन बोल रहा था बताइए माता जी। हाँ भक्ति भगवान के चरण में। अच्छा बहुत अच्छा, तो आप पहुंच गए ना बहुत अच्छा। हाँ मदन मोहन जी आए हैं यहाँ। हाँ माता जी बहुत भक्तिमती हैं। हम जब महानंदा नगर में थे कम्युनिटी हॉल में, माता जी आप जहाँ रहते ऋषि नगर से सुबह को पैदल अकेला अकेला आती थी मंगल आरती में, और हम माता जी के लिए गाड़ी भेजना शुरू किया था है सुबह को। तो अब ये हमारा प्रचलन हो गया है, ये रीति बन गया है कि हर सुबह जो आना चाहते हैं गाड़ी से हम गाड़ी भेज देते हैं ताकि आप आसानी से आ सकते हैं। एक दिन मैं सुबह ऋषि नगर में गया था मंगल आरती के पहले, ऋषि नगर गया था वहाँ कोई कहाँ से ऋषि नगर गया था ना, वो कुछ मूर्ति देखने के लिए, हमारा वहाँ स्टूडियो था, मूर्ति देखने के लिए गया। तो तब देखा माता जी आ रही थी जप करते हुए, तो मैं गाड़ी रोक के माता जी को उठाया, ले लिया गाड़ी में। तब से मैं ये किया कि गाड़ी भेजना चाहिए, इतना दूर से पैदल आना औरतों के लिए ये नहीं था। बहुत बहुत अच्छा, हम लोग तो आए हैं आप सबको भगवान के पास लाने के लिए, और जब आते हैं आप लोग भगवान के पास तो हमें बहुत आनंद होता है। हम सोचते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सफल हो रहा है, नहीं तो नहीं तो उज्जैन आने का क्या जरूरत था हमको। आप बाहर के आदमी बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं आप उज्जैन जाने से आप यहाँ समय नहीं दे रहे हैं, और उज्जैन में आप लोग बोल रहे हैं महाराज आप नहीं यहाँ समय नहीं दे रहे हैं तो मैं आप रहूंगा, अब तो केवल मैं 5 दिन के लिए आया, 5-6 दिन के लिए आया। तो मैं 16 दिसंबर को यहाँ आएंगे, तब लगभग 3-4 हफ्ता मैं यहाँ ठहरूंगा। ऐसे चर्चा होने से जानकारी होता है थोड़ा बहुत, और जानकारी होने से भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ना चाहिए ये भी पता लग जाता है, और उसके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? प्रश्न करना चाहिए। पारुल भौतिक जगत में रहकर भगवान को सेवा और छूटकर, देखो भौतिक जगत में भगवान का सेवा दो प्रकार का हो सकता है। एक है साधन भक्ति और है प्रेम भक्ति। साधन भक्ति का मतलब, साधन भक्ति का मतलब भक्ति का प्रैक्टिस हो रहा है, भक्ति कैसे करना है वो सीख रहा है। जैसे पानी में कैसे तैरना है वो पहले हमको सीखना पड़ता है, उसके बाद हम तैर सकते हैं। या जब साइकिल चलाना सीखना है पहले कष्ट करके सीखना पड़ता है। तो ये जब तक हम सीखते हैं तो उसको साधन भक्ति कहा जाता है। और जब भक्ति में हम ये पूर्ण बन जाते हैं, भक्ति कंप्लीट हो जाता है, भक्ति सीख लेते हैं, तो उसे प्रेम भक्ति कहा जाता है। तो प्रेम भक्ति यहां और वहां एक ही तरह है। जो प्रेम भक्ति का स्तर में पहुंच गए हैं उनके लिए यहां और वहां में, इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में भक्ति में कोई अंतर नहीं रहता। परंतु साधन भक्ति के साथ प्रेम भक्ति का अंतर है। प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये सारे वैदिक ज्ञान जो है ये केवल प्रश्न उत्तर का, प्रश्न और उत्तर का ही विचार है। जैसे भगवद गीता क्या है, भगवद गीता अर्जुन ने प्रश्न कर रहे हैं और कृष्ण ने जवाब दे रहे हैं। महाभारत क्या है, अच्छा पहले मैं श्वेता का प्रश्न लेते हूँ, उसको हाथ उठाया था, उसके बाद में आप कर लेना। श्वेता हाँ, तो माया जब अटैक करती है तो हाथ जोड़ के माया के पास प्रार्थना करना, आप तो कृष्ण का बहन है, आप तो कृष्ण का शक्ति है, कृष्ण का सेवा करने को अवसर हमें आपके पास। हाँ माया, तब माया तब माया जोग माया बन जाएगी। माया माया कौन है, माया है भगवान का शक्ति। माया जो भक्त नहीं है उसके लिए माया है महामाया, और जो भक्त बन गए हैं उसके लिए माया है जोग माया। जैसा पुलिस है, जो चोर है उसको पुलिस क्या करता है, चोर को पकड़ के अच्छा से दंड देता है, सजा देता है। पर जो भले आदमी है उसके लिए क्या करता है पुलिस, उसका जब मुसीबत होता है तो उसको आके हेल्प करता है। और अगर वो कभी राजा को मिलने को जाता है तो क्या कर, पुलिस क्या करता है, उसको हेल्प करता है, राह दिखा के ले जाता है राजा के पास। पुलिस एक ही है, बल्कि जो चोर है उसके लिए पुलिस है सजा देने वाला, और जो भले आदमी है उसके लिए पुलिस है सहयोग देने वाला। तो वैसे ही माया, जब तक हम भगवान को भक्त नहीं बनते हैं तब तक महामाया, और जब हम भगवान को भक्त बन जाते हैं तो योग माया। तो इसीलिए या तो माया को ही प्रार्थना करो, नहीं तो भगवान के पास प्रार्थना करो। जब तुम हाथ जोड़ के माया के पास प्रार्थना करोगे तो टेस्ट में पास हो जाओगे। तब माया बोलेगा ठीक है पास। वो माया तब वो बैठ के वो लिखना भी, उत्तर भी देना नहीं पड़ेगा, एग्जाम्स भी देना नहीं पड़ेगा, एग्जाम देते हुए भी तुमको माया पास कर देगी। अच्छा माता जी, हाँ पति और पत्नी का एक ही गुरु होना आवश्यक है। देखिए, एक गुरु होना ही अच्छा है, पर इस्कॉन में ऐसा होता है कि बहुत सारे इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं, तो इसलिए जिसके प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि एक संस्था में है, उसलिए कुछ असुविधा नहीं होता है। इस्कॉन में रहकर अगर दूसरा गुरु चुन लिए हैं तो उसमें उतना असुविधा नहीं होता है, परंतु गुरु अगर इस्कॉन के बाहर कोई आदमी होगा, उसका मार्ग कोई भिन्न होगा, तब मुश्किल हो जाएगा। तो पति का गुरु बोलेगा तुम इस तरफ चलो, पत्नी का गुरु बोलेगा तुम उस तरफ चलो, तब मुश्किल हो जाएगा। बल्कि दोनों गुरु अगर इस्कॉन में ही है तो दोनों ने एक ही मार्ग दिखाएंगे, बोलेंगे प्रभुपाद जो मार्ग दिखा रहे हैं वही चलो, वही मार्ग ही लेने हैं। और एक बात यह है, पत्नी के लिए प्रथम गुरु है पति, पत्नी के पहला गुरु है पति, पति गुरु है ना। हाँ, आपका पत्नी यहाँ है। हाँ,
भक्त की इच्छा होनी चाहिए कि वो भगवान को आकर्षित
करे। नहीं, भक्त कभी नहीं सोचता है। हाँ, भक्त तो हर समय सोचता है कि मैं भगवान का दास हूँ। भक्त कभी नहीं सोचेगा कि भगवान मेरा दास बनेगा, भगवान मेरे वश में आएंगे, पर भगवान भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते। जैसे देखो, हनुमान कभी नहीं रामचंद्र को बोला कि आप मेरे समान हो जाइए, आप मेरा बराबर, मतलब आप मेरा सखा हो जाइए। हनुमान हर समय भगवान को, रामचंद्र को सेवा में ही मगन थे, पर हनुमान को इस सेवा में रामचंद्र ने इतना संतुष्ट हो गए थे, उन्होंने पूछा हनुमान को, हनुमान तुम क्या चाहते हो, बताओ क्या तुम चाहते हो। तो ऐसे भगवान खुद आके भक्तों को पूछते हैं, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, फिर भी भक्त बोलते हैं क्या आपका भक्ति के अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल भक्ति ही दीजिए, आपको सेवा करने का अवसर दीजिए, आपको सेवा करने का अवसर ही केवल मैं चाहता हूं, आपका सेवा लेने का कोई अभिलाषा हमको नहीं है। जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो नवीन भक्त हैं, वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं, भगवान के पास सेवा मांगते हैं, भगवान मेरे लिए ये करो, हमको ये दो, हमको ये लाओ। तो ये जो मनोभाव है, ये जो भक्त नहीं बना, जो उत्तम भक्त नहीं है, कनिष्ठ भक्त है, उसका मनोभाव ऐसा होता है, भगवान से मांगता है, भगवान को बोलता है तुम मेरे लिए ये ऐसा करो, मतलब मैं ये चाहता हूं आप दीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है, भगवान को पूछ रहे हैं आप लाइए मेरे लिए, ऑर्डर हो गया। परंतु भक्त जब भक्ति भाव जब प्राप्त हो जाते हैं, तब कभी भी भगवान के पास मांगते नहीं है, वो पूछते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं, यह विचार कभी उनका मन में नहीं रहता है। देखो, हाँ, भक्त को भक्त जब भक्ति प्राप्त होते हैं, तब उनका मन में और और कोई कृष्ण के सेवा के बिना और कोई चिंतन नहीं रहता है, मैं चाहता हूं ये भावना नहीं रहता है, कृष्ण के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कृष्ण क्या चाहता है, ये भावना रहता है। और इसलिए जब आध्यात्मिक जगत में वापस जाते हैं तो भक्तों का मन में कभी ऐसा भावना नहीं रहता है कि मैं ये बनूं, मैं ऐसा भक्ति प्राप्त हूं या भगवान का ऐसे सेवा करूं। भगवान जैसे उनको चाहते हैं उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। भगवान अगर बोलेंगे, भगवान अगर चाहेंगे कि तुम एक गोपी बन जाओ, गोपी के रूप में तुम सेवा करो, भक्त बोलेंगे वही मेरा वास, वही मैं करूँगा। भगवान अगर कहेंगे कि तुम मेरा सखा बनो, तब वो वही भाव देंगे, सखा बन जाएंगे। और भगवान अगर बोलेंगे तुम एक मुकुट बन जाओ, तो भक्त मुकुट बन जाएंगे। परंतु भावना कैसा रहता है, हर व्यक्ति वहाँ, चाहे वो एक पेड़ हो, पौधे हो, मुकुट हो, या पत्थर हो, या नंद महाराज हो, या राधा रानी हो, या ललिता हो, विशाखा हो, या सुदाम सीदाम वसुदाम हो, कोई भी हो, उनका सबका मनोभाव ये है कि हर समय भगवान का चिंतन में ही मगन रहते। जैसे हार भी या मुकुट भी भगवान के चिंतन में मगन रहते हैं, और वो नहीं चाहते, वो नहीं बोलते हैं कि मैं जाके भगवान को सिर पर बैठूं। उन्होंने प्रतीक्षा करते हैं कि कब भगवान के भक्त आकर हमको लेकर भगवान के सिर पे श्रृंगार करेंगे। तो ये जो भाव है, ये शांत भाव है। शांत का मतलब है वो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, चेतन है परंतु शांत है। दास भाव में सेवा, दास भाव में ऐसे बैठ के नहीं रहेंगे, भगवान को क्या जरूरत है वो लाना है। वैसे दास्य है, सख्य है, भगवान को सखा, भगवान को सखा बैठ के नहीं रहेंगे। सुबह होते ही, सुबह नहीं हुआ, रात को ही वो घर से निकलकर कृष्ण का घर के सामने चले गए और बैठे हैं कब कृष्ण निकलेंगे, है ना। तो ऐसे भिन्न भिन्न भाव का, भिन्न भिन्न रस का, भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति होता है। हाँ हाँ जरूर है, परंतु कैसे होगा, भगवान जब बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि हमको अभी अभी गोलक वृंदावन जाना है। भक्त का मनोभाव है, यहाँ पर भी तो भगवान का सेवा करने का कितना मौका मिल रहा है, कितना काम बाकी रहे हैं, सारा दुनिया जहन्नम में जा रहा है, इसको कैसे हम उद्धार करेंगे, अधर्म का कितना विस्तार हुआ है, धर्म को हम करके कैसे प्रतिष्ठा करेंगे, काम का कोई कमी है यहाँ, तो यहाँ का काम छोड़ के वहाँ जाने का क्या क्यों हम अभिलाषा करेंगे। हाँ, यहाँ जब है तो यहाँ जो करना है हमको करना होगा। तो यहाँ करते करते भगवान को जब कृपा होगा, भगवान का जब इच्छा होगा, तब भगवान हमको वहाँ ले सकते हैं, नहीं तो मृत्यु के पश्चात भी भगवान यहाँ भेज सकते हैं। बोलेंगे भगवान अगर सोचेगा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहा था, चलो फिर चले जाओ वहां उज्जैन में जाके प्रचार करते रहो, तो भक्त बोलेगा आपका जो मर्जी, आप जो चाहेंगे वही होगा। करिष्ये वचनं तब, तुम जो निर्देश हमको देंगे उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। ये है भक्तों का मनोभाव।
तो आपने बताया था जय श्री कृष्ण, तो भगवान से अपन कुछ मांगना नहीं है, जैसे अपन भक्त के रूप में उनको जिससे भी उनका सेवा करने के लिए ये विचार करो ठीक आपका।
नहीं देखिए उसका स्तर कौन से है ये देखना होगा। जब बच्चा है तो वो पिता के पास मांगते हैं, हाँ पिताजी हमको ये दो, हमको लड्डू दो, हमको खिलौना दो, बोलते हैं ना, और पिता भी देते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो पिता से नहीं मांगते हैं, हाँ उसको मनोभाव ऐसा है कि जो ज़रूरत होगा पिताजी दे देंगे, हमको क्या मालूम हमको क्या चाहिए, हमको जो ज़रूरत है पिताजी देंगे। और जब बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, जब रुपया कमाना शुरू करता है तो पिताजी को बोलता है आप रिटायर्ड हो जाइए, मैं आपको देखभाल करूंगा। तो वैसे ही भक्ति भाव भी हम जब बच्चा हैं भक्ति मार्ग में तब हम भगवान से मांगते हैं, जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो सोचते हैं कि भगवान से मांगने का क्या ज़रूरत है, भगवान तो सब कुछ दे ही रहे हैं, हाँ अपने आप दे देंगे। और जब और बड़ा हो जाएंगे तब बोलेंगे अब भगवान हाँ को कुछ नहीं करना, हम भगवान के लिए सब कुछ करेंगे, ऐसे मनोभाव का परिवर्तन होता है। हम जितना आगे बढ़ते हैं, हम जितना बड़े होते हैं, उतना ही हमारा मनोभाव का परिवर्तन होता है। हरे कृष्ण। आप कहाँ रहते हैं? वो आप कहाँ रहते हैं? अच्छा आप यहाँ पे ही रहते हैं, उज्जैन में रहते हैं? नागदा रहते हैं। अच्छा
मेरा
भांजा है। ओ अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा भांजा है आपको।
तुमने बोला अभी आखिरी है शायद गुरु जी कहीं जाने का है,
हाँ
दो दिन से नहीं आता है।
अच्छा
तो आज बड़ा चलना है।
बहुत अच्छा आते रहना। हरे कृष्ण। या वेरी गुड, तुम तो पीएचडी कर रहे हैं ना? हाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा भोपाल में, हाँ राइट। बहुत अच्छा, कितने साल बाकी हैं आप? और दो साल। बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? सांगली डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा ओ अच्छा महाराष्ट्र में रहते हैं। अच्छा ओ अच्छा अच्छा आप वहाँ के टेंपल प्रेसिडेंट हैं। कब आए हैं उज्जैन? अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा कल जाएंगे। अच्छा बहुत अच्छा,
मंदिर बहुत अच्छा है, हमारे गुरु भी है साथ में, उनको देखने की इच्छा थी।
अच्छा
तो पहला है उनको लेके आया।
बहुत अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? सब ठीक है,
बहुत अच्छा से
ओके। हरे कृष्णा। मैं 16 तारीख दिसंबर को आऊँगा वापस। उस समय मैं दो तीन चार हफ्ते रहूँगा। हरे कृष्णा। लगभग एक महीना रहूँगा मैं उस समय। क्या करना है, क्या करना चाहिए? भगवान को नाम जपिए, माला में जप माला में भगवान को नाम जपते रहिए, महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने से मन भगवान के प्रति मग्न होगा। अच्छा राधा रानी है कृष्ण का शक्ति,
हाँ।
और कृष्ण है शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान एक है फिर अलग भी है, एक ये अचिंत है, एक भी है अलग भी है। हाँ दोनों का सेवा मतलब, हाँ पहले राधा रानी को सेवा करना चाहिए, इसलिए हम हरे कृष्ण राधा रानी को बोलते, सीताराम सीता पहले, राम बाद, हाँ लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, हाँ, कृष्ण के पास पहुंचने के लिए हाँ वो आसान हो जाता है। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण।